हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज हरि कथा में, सत्संग में। निकुंज राधा यहाँ सत्संग का आयोजन किया है। और किसका घर है? प्रीति का घर है। तो प्रीति का व्यवहार सब कीजिए और प्रेम की कथा सुनिए। और प्रीति का भी धन्यवाद करते हैं कि आप सबको प्रेम से बुलाया है और हमको भगवान श्री कृष्ण के प्रेम भक्ति की कथा करने का अवसर दिया है। तो बात चल रही थी कि भगवान हमारे मित्र हैं। भागवत में लिखा है भगवान हमारे अज्ञात मित्र हैं। अज्ञात मित्र का मतलब हम नहीं उसको जानते हैं, वो हमको जानता है। हम उसको नहीं जानते हैं, वो हमको जानता है। ऐसे ही भगवान हमको जानता है, हम उसको नहीं जानते हैं। जैसे छोटा जन्म लिया हुआ बच्चा अपनी माँ बाप को नहीं जानता है, लेकिन माँ बाप कहती है ये मेरा बेटा है। कहती है कि नहीं कहती? बच्चा जानता है? नहीं जानता है ना। लेकिन माँ बाप को तो मालूम है मेरा बच्चा है। कितना उसका ध्यान रखते हैं, उसके जन्म से पहले उसके कपड़े तैयार करके रखते हैं कि नहीं रखते हैं? तो उनको पहले चिंता होती है ना। लेकिन बच्चे को अज्ञात है कि माता पिता कौन है, उसको मालूम नहीं। लेकिन माता पिता को मालूम है कि मेरा बच्चा कौन है। ठीक ऐसे ही हमको मालूम नहीं है कि हमारा भला चाहने वाला, हमारा सुहृद, हमारा शुभ चिंतक, हमारे सुख सुविधा का संबंध जो भी है उसका प्रबंध करने वाला कौन है, हमको मालूम नहीं है। लेकिन भगवान को मालूम है कि हम उसकी संतान है, इसलिए वो हमसे प्रेम करता है, इसलिए हमारे लिए वो सब व्यवस्था करता है। जन्म से पहले माँ के स्तन में दूध रखता है कि नहीं रखता है? तो पहले प्रबंध किया ना, जन्म से पहले ही कोई बच्चा पैदा होगा उसको दूध की जरूरत होगी, तो भगवान ने पहले व्यवस्था करके रखी कि नहीं रखी? तो भगवान कितना ध्यान रखता है हमारे जन्म से पहले कि हमको आवश्यकता किस चीज की है। दूध माँ का खत्म होने लगता है तो दांत उसके निकलने लगते हैं, तो ये व्यवस्था भी पहले से करके रखी है ना। अभी मेरे दांत नहीं निकलते, मैं बहुत परेशान हूँ, लेकिन बच्चे के दांत निकल आते हैं, वो भी टाइम से निकलते हैं। दूध खत्म होने लगा नहीं, दांत निकले नहीं। तो व्यवस्था कितनी सुंदर व्यवस्था जन्म से पहले भगवान ने हमारी करके रखी है इस दुनिया में आने के लिए। कौन बच्चे को अंदर खाना पहुंचाता है? आपके किचन से टिफिन जाता है? कैसे प्रबंध किया है भगवान ने, कभी विचार किया है? 9 महीने बगैर खाने के कोई रह सकता है क्या दुनिया में, वो भी इतना छोटा सा बच्चा? कितना बड़े विज्ञान भी ऐसा काम नहीं कर सकता है। माँ जो खाती है उसके रक्त से, उसके खून से जरूरी सामान सारा बच्चे की नाभि के साथ जुड़े हुए नाली से उसको मिलता है, उससे वो जीता है। सांस भी नहीं लेता है फिर भी जी रहा है। इस दुनिया में कोई 1 मिनट सांस बंद करके जी के दिखाओ? 2 मिनट नाक बंद करके दिखाओ तो सही, सांस बंद जाए वो बंद हो जाए तो मर जाएगा। और 9 महीना सांस नहीं लेता है, पहली बार सांस बाहर आके लेता है। और जैसे ही हमारी खराब हवा को सूंघता है तब से ही बदमाशी शुरू कर देता है। उससे पहले रोता भी नहीं, रोता है बच्चा कभी? अब तो सब माता जी लोग, बच्चा अंदर रोता तो नहीं है ना, बाहर निकलते ही रोता है। केवल सिर्फ हम इस दुनिया की हवा का पहला असर ऐसा है कि बच्चे ने रोना शुरू कर दिया और सब परेशान हो गए। सबको परेशान आते ही करता है कि नहीं, रोना शुरू कर दिया कि नहीं कर दिया? उससे पहले शांति से उसको बगैर सांस लिए भी जिंदा किसने रखा? तो कितना बड़ा हमारा मित्र है, इससे ज्यादा और कौन सहयोग करेगा? दिन रात जो देखभाल कर रहा है, जन्म से पहले 9 महीने बगैर सांस लेने के भी जीवित रखा कि नहीं रखा उसने? और तब तो अंदर बात भी करता है भगवान उस बच्चे से, हमसे नहीं करता है, उस बच्चे से बात करता है। क्योंकि बच्चे रो के भगवान को पुकारता है कि कहां मेरे को अंदर बंद कर दिया है, मैं तो कुछ देख नहीं सकता हूं। जिस आदमी को जेल में डाला जाता है उससे पूछो कि उसका हाल क्या होता है, लेकिन जेल में खिड़की तो होती है, लेकिन ये अंदर तो अंधकार में पड़ा हुआ है बच्चा। ये कमरे में बंद होकर रह के दिखाओ 10 दिन, नहीं रह सकते ना, वो बच्चा अंदर पड़ा हुआ नहीं, तब तो भगवान को प्रार्थना करता है, उल्टा लटका होता है तब प्रार्थना करता है बेचारा कि मेरे मालिक मैं अज्ञानता के कारण इस संसार में आके फंस गया। अब मुझे यहां से निकालो, मैं आपका भजन करूंगा, आपका नाम लूंगा, आपका स्मरण करूंगा, आपकी पूजा करूंगा, आपको नमस्कार करूंगा, बस मेरे से निकालो। ऐसे ही जैसे जब पुलिस किसी को पकड़ लेती है तो कहती है मेरे को छोड़ो मेहरबानी करके, अभी कभी मैं गलती नहीं करूंगा, ऐसे करते हो भी? या बच्चे को आप जब डांटते हो तो हाथ जोड़ के कहता है कि आज मैं कभी नहीं गलती करूंगा, अब मेरे को छोड़ दो, ऐसे करते हैं। वैसी हालत हमारी होती है, हाथ जोड़ के कहता अब इस बार हमको मौका दीजिए, बस बहुत हो गया। तब हम वायदा करके आते हैं कि हम जैसे संसार में गए, यहां से आपने हमको निकाला, हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन बाहर आते ही इस दुनिया की हवा ऐसी लगती है कि हम भगवान को भूल जाते हैं और संसार के न जानते वाले लोगों से अपना संबंध बना रखते हैं। हम नहीं जानते उनको, उन सबको अपना मान लेते हैं। भगवान हमारा सुहृद है, सु मतलब अपना, हृदय मतलब दिल, हमारी दिल में बैठा हुआ है। हम उसको नहीं जानते हैं, लेकिन वो हमको न सिर्फ इस जन्म से जानते हैं, वो हमारे को जन्म जन्मांतर से जानते हैं, क्योंकि उनने कभी हमारा साथ छोड़ा ही नहीं है। एक भागवत में कथा आती है पुरंजन उपाख्यान, आप लोगों में किसी ने सुनी है पुरंजन उपाख्यान? सुना है? पुर कहते हैं नगर को, शहर को, रंजन कहता है उसके अंदर मौज मनाने वाला। ये शहर, ये जो शरीर हमारा है ये पुर है, जैसे कानपुर होता है, नागपुर होता है। भगवत गीता कहते हैं नव द्वारे पुरे देही, ये नव दरवाजों वाला शहर है। अभी भी दिल्ली दरवाजा है ना, दिल्ली में है, क्योंकि दिल्ली दरवाजा है कि अजमेरी गेट है, तो सब दरवाजे होते थे ना शहरों को, पहले शहर बंद होते थे। तो शरीर में 7 दरवाजे तो इधर हैं, 2 आंख है, 2 नाक है, 2 कान है, 1 मुख है। ये जो 7 दरवाजे हैं ना, ये भगवान की सेवा में लगने के लिए हैं। दो दो जो है मलमूत्र त्यागने की इंद्रियां हैं, तो ऐसे 9 द्वारों का ये शरीर है, उसमें रंजन कौन करता है? उसका नाम है पुरंजन। तो भागवत में कथा ऐसे आती है कि एक राजा जिसका नाम पुरंजन था, भारतवर्ष में भ्रमण करने लगा। भारतवर्ष का नाम क्यों लिखा? क्योंकि केवल भारतवर्ष ही कर्म भूमि है और कहीं कर्म नहीं किया जा सकता। भारतवर्ष का ये मतलब मत समझे जो अभी हमारा इंडिया है, भारतवर्ष का अंदर जहां मानव रहते हैं इस पृथ्वी के ऊपर, वो सारा ही भारतवर्ष है। ये महाराज भरत का राज होता था, इसलिए इसको भारतवर्ष कहते हैं। दूसरे वर्ष हैं, उनका नाम दूसरे हैं, हरिवर्ष, इलावर्त वर्ष, केतु माल वर्ष, जो भी जो अलग वर्ष है। वहां कोई कर्म करने का किसी को टाइम अधिकार नहीं है, वहां तो केवल भोग करना है। वहां भी लोग रहते हैं, इंसान रहते हैं, लेकिन स्वर्ग से नीचे आते हैं, 10,000 साल तक रहते हैं, बूढ़े होते नहीं है, बीमार होते नहीं है, बच्चे होते नहीं है, मरने से 1 साल पहले सिर्फ 1 बच्चा होता है। ये भागवत में लिखा है, उधर ये कोई समस्या ही नहीं, न स्कूल को सुबह छोड़ने की चिंता, न उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाने की, 10,000 साल तक सुखी रहो। उसका भोग जो स्वर्ग से नीचे उतरते हैं उनके लिए वो रोग लोग है, पढ़ा है ये।
जैसे जन्म मृत्यु इधर होता है पृथ्वी में, वैसे ही उधर स्वर्ग में होता है जन्म मृत्यु?
स्वर्ग में तो जन्म मृत्यु होता ही है, मरेगा तब नीचे आएगा, उधर नीचे फेंकेगा तब तब वो बरसात के माध्यम से नीचे जाएगा, अन्न के माध्यम से पिताजी के वीर्य में जाएगा, फिर माताजी के उत्तर में उधर में आएगा। तो ऐसे आत्मा नीचे उतरती तो है, मतलब ऊपर से नीचे गिरती है तब ऐसे उतरती है। तो दूसरे लोक है, भागवत के पंचे स्कंद उन सब लोगों का वर्णन है कि वहां बहुत बड़ा भोग है, सुख है, आनंद है। जो स्वर्ग से नीचे आते हैं वहां रहते हैं, तो वो पूरन जन भारत वर्ष में घूम रहा था तो एक बहुत सुंदर स्त्री को देखा। स्त्री को पांच फन वाला सांप उसकी रक्षा कर रहा था, 11 उसके सैनिक उसके चारों ओर खड़े थे और बहुत सारे और बड़ी सेना उसके पीछे चल रही थी। उसको देखकर पुरंजन बड़ा आकर्षण हुआ, अरे नहीं नहीं तो कन्या बहुत अच्छी लग रही है। उससे बात करते हुए कहा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं, और उससे विवाह करके और पुर के अंदर रहने लगा। तो पुरंजन पुर में रहने लगा। तो कौन है वो कन्या? वो कन्या है बुद्धि, हमारी बुद्धि। बुद्धि रूपी कन्या पांच फण वाला सर्प है सांप। कौन है? पांच प्राण जो सांस लेते हैं, ये हवा शरीर में चल रही है ना, ये पांच प्राण ये जब तक है तो वही तो रक्षा करते हैं बुद्धि की, क्या शरीर की, वो है प्राण है, तब तक प्राण निकल गया सब समाप्त हो गया। पांच फण, तो 11 उसके सैनिक कौन है? एक मन और 10 इंद्रियां, उसी के द्वारा ये शरीर अपना काम करता है। आंख नाक कान ये इसको ज्ञान इंद्रियां कहते हैं, हाथ पांव ये कर्म इंद्रियां है। तो 10 इंद्रियां एक मन, ये 11 सैनिक और बहुत सारे और भी सेविका, ये इच्छाएं ये करेंगे वो करेंगे, उसके साथ विवाह कर लिया। मतलब बुद्धि ने आत्मा पुरंजन है, बुद्धि इस शरीर में रहने वाली स्त्री का स्वरूप है। उन दोनों का आपस में जब तदात्म्य होता है तब ये शरीर का काम शुरू होता है। बुद्धि क्या है? बुद्धि जड़ है, आत्मा चेतन है। जब दोनों आपस में मिलते हैं तब ये शरीर चलता है, नहीं तो शरीर कैसे चलेगा? तो वो पुरंजन के साथ उसका अज्ञात मित्र होता है, जो पुरंजन उसको नहीं जानता है, वो भी उसके साथ आ जाता है। फिर पुर के अंदर भोग कैसे करता है? बोलते आंख के दरवाजे से निकल के सीरियल और सिनेमा देखने जाता है पुरंजन, कान के दरवाजे से गाना सुनने जाता है, मुख के दरवाजे से गोलगप्पे खाने जाता है। ऐसे लिखा है कि ये सब दरवाजे हैं, इनके द्वारा पुरंजन भोग करता है। हम इंद्रियों के द्वारा भोग करते हैं और कैसे करेंगे? और बड़ा मस्ती से आनंद से जीता है। लेकिन एक और राजा होता है, उस राजा का नाम है चंडवेग और उसकी कन्या है काल कन्या, जरा उसका नाम है, और वो भी चाहती है कि मैं इस पुरंजन के साथ शादी करूं। लेकिन पुरंजन क्या, कोई भी उससे शादी नहीं करना चाहता। ये कौन है? ये चंडवेग समय है काल, उसकी कन्या जरा बुढ़ापा है, ये तो स्त्रियों और पुरुष दोनों से शादी करना चाहती है, सबके गले पड़ना चाहती है, और कोई उसको नहीं चाहता। कोई बुढ़ा का बच्चा आता है इस दुनिया में, लेकिन वो किसी को छोड़ती है ये कन्या। ये जो काल कन्या है, जरा जिसका नाम है, जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा, ये तो सबके गले पड़ना चाहता है, सबके पाले पड़ना चाहता है, लेकिन कोई इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं। तब उसका विवाह कराते हैं ज्वर के साथ, ज्वर कहते हैं बुखार को, और फिर काल कन्या और ज्वर शादी नहीं की ना, तो आक्रमण करते हैं पुरंजन के पुरी के ऊपर। थोड़े समय के लिए पांच फण वाला सांप भी लड़ाई करता है, सैनिक भी लड़ाई करते हैं, मन में तो आस्ते आस्ते सैनिक कितने हैं चंडवेग के पास? 365 काले और 365 गोरे सैनिक हैं। उनके साथ आक्रमण करता है इस पुर के ऊपर, 360 काले रातियां और 360 काले दिन, दिन और रात रूपी उसके सिपाही हैं, जो इस शरीर को रोज एक एक चोट मारते रहते हैं ताकि जरा के साथ शादी करो, जरा के साथ शादी करो। 40 से आगे बढ़ते हैं, फिर स्नो व्हाइट लाके लगाते हैं सर के ऊपर कि तुम्हारा सफेद बाल कौन है, जल्दी तुम जरा के साथ विवाह तुमको करना ही पड़ेगा। फिर 2-3 दांत गिराने का प्रयास करते हैं कि अब जल्दी करो। तो ये चंडवेग के सिपाही हैं, ये शरीर के ऊपर आक्रमण करते हैं। फिर आस्ते आस्ते ये बेचारे हमारे इंद्रिया रूपी सैनिक है ना, कान बहरे होने लगते हैं, कुछ सुनाई नहीं होने लगता है, आस्ते आस्ते कमजोर पड़ता है, आंख से कुछ दिखने नहीं लगता है, दांत गिरते हैं तो चबाना मुश्किल हो जाता है और शरीर में सर झरियां पड़ जाती हैं, तो आस्ते आस्ते पांच फन वाला सांप भी कमजोर पड़ता है और पुरंजन को पुर छोड़ते हुए पुरंजनी बहुत याद आती है, उसको छोड़ना नहीं चाहता है। इसलिए दूसरे जन्म में विदर्भी के रूप में स्त्री का जन्म होता है, वही पुरंजन दोबारा स्त्री बनता है। वो पुरुष था जो मरते समय स्त्री का ध्यान, तो माता जी लोग आप भी पहले सब पुरुष थे, मरते मरते ऐसा स्त्री में आसक्ति रह गई कि अब तो आप बन गई स्त्री। आप नाराज मत हो पुरुषों के ऊपर, आप एक राउंड करके आए हैं। ऐसे लिखा है भागवत में, मैं क्या करूं, लिखा है कि अंत समय पुरंजन ने पुरंजनी का ध्यान किया और मरने के बाद वो विदर्भ देश के अंदर विदर्भी के नाम से पुरंजन लड़की हो गया और मल्या ध्वज राजा के साथ उसका विवाह हो गया और फिर राजा युद्ध के अंदर मारा गया तो पुरंजनी रोने लगी। तब अज्ञात मित्र जो परमात्मा था उसने कहा तुम किसके लिए रो रही है, बोला ये मेरा पति। बोला तुम अगले जन्म में पति थे पुरंजनी के, कई बार तुम पति बने हो, तुम पति बने हो, मैं तुम्हारा मित्र हूं, तुमने कभी मेरी तरफ देखा, इस संसार में कई बार तुम आए हो गए हो, कभी राजा महाराजा भी बने हो, कभी स्वर्ग के अंदर भी सुख भोगे हैं और कभी बहुत डंडे नरक के भी खाए हैं, तुमने कभी मेरी ओर देखा, मैं तुम्हारा मित्र तुम्हारे साथ सदा रह रहा हूं, तुम्हें याद दिला रहा हूं कि तुम्हें क्या करना है हमेशा, मैं हम जो कुछ करते हैं ये हमारे कर्मों के अनुसार हमको करना है, हमें याद कौन दिलाता है, स्मृति भगवान देता है, हमको तो पता नहीं है लेकिन अंदर बैठा हुआ भगवान ये सारी व्यवस्था हमारी करता है। इसलिए उस वक्त फिर विदर्भी ने अपने अज्ञात मित्र की बहुत अच्छी तरह से आज्ञा मान ली और जन्म मृत्यु से मुक्त हो गया, वापस भगवत धाम चला गया। ऐसे जो भगवान हमारे हृदय में अज्ञात मित्र के रूप में बैठे हैं उसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि वो हमसे कितना प्रेम करते हैं, वो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं, उसके साथ हम अपना संबंध जो भूल गए हैं उसको पुनः कैसे स्थापित करें। तो ये जो कृष्ण भावना अमृत संघ संस्था है इसका एक ही उद्देश्य है कि भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में सबके हृदय में बैठा है, यही भगवद गीता का श्लोक है, सर्वस्चाम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में बैठा हूं। वो तो बैठा है, हम उसको भूल गए हैं। क्यों भूल गए हैं? क्योंकि हमारा शरीर बदलता रहता है, शरीर का बदलना भूलने का कारण है। फॉरगेटफुलनेस, काज ऑफ फॉरगेटफुलनेस इज चेंज ऑफ द बॉडी। बुढ़ापे में बचपन की बातें भूल जाते हैं, शरीर बदल गया ना, शरीर का बदलना ही भूलने का कारण है। तो हम शरीर बदलते हैं, शरीर बदलने से अगर नहीं भूलते, ये भगवान ने कृपा की कि हम भूल जाते हैं, नहीं तो इससे पहले जन्म की बातें हमको आज याद होती तो दुनिया सब लड़के मरती। हमें अच्छा है याद नहीं है कि हमारे घर में जो बेटा पैदा हुआ है अगले जन्म का हमारा बहुत बड़ा शत्रु था, हमें मालूम नहीं है तो प्रेम से उसको खिला रहे हैं, पता तब लगता है जब जवान होता है और सबको लूट कर चला जाता है, हम अपने घर बनाए घर के बाहर खटिया के ऊपर खांसते रहते हैं, तब पता लगता है कि कौन था ये, पहले पता नहीं लगता। ऐसे जिसने घर बनाया वो घर के बाहर खटिया पे देखे नहीं देखे, जाके शहर में देख लो, हाँ देखिए ना, जिसने लाखों गरम गरम रोटी बना के खिलाई थी बेटों को, उसको सूखी रोटी मिलना मुश्किल है, बाहर पड़ी हुई है घर के, देखिए कि नहीं देखिए, तो पता नहीं लगता है, इसलिए काम चल रहा है दुनिया को, नहीं तो दुनिया लड़मर की खत्म हो जाती। यही भगवान ने कृपा की है कि हमें पता नहीं है कि कौन हमारे साथ रह रहा है। एक स्त्री पुरुष बहुत आपस में लड़ते थे, पंडित जी से समाचार पूछा, उसने बोला तुम पहले कौवे थे और ये गाय थी, तुम इसको चूंच मारते थे, अभी ये तुम्हारा बदला ले रही है, तेरे को चूंच मारती रहेगी, ये गाय अभी तुम्हारे पति होके आया है और तुम्हारा पुराना हिसाब है, अब चूक तू करो। पंडित जी ने समाचार उसको बताया, हिसाब है तुम्हारे पुनर्जन्म की ये कथा है भाई। तो अच्छा है कि हमको याद नहीं है, लेकिन अब ये नहीं याद रहे तो अच्छा है, लेकिन भगवान जो हमसे प्रेम करता है उसको अगर पुनः हम याद कर लें तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। तो यहाँ जो सत्संग होता है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ की ओर से, उसका उद्देश्य है जो हम अपना संबंध भगवान से भूल गए हैं उसको पुनः कैसे हम स्मृति में लाके याद करें। और भगवत गीता के अंत में एक ही शब्द आएगा, स्मृति लब्ध्वा। अर्जुन कहेगा जो मैं भूल गया था अब मुझे याद आ गया। ये हमको याद आ जाए कि हमारा मित्र हमारे दिल में बैठा है, वही हमारा शुभ चिंतक है। यही तो मंदिर में जाके रोज प्रार्थना करते हैं ना, तुम्हें वो माता च पिता, तुम ही हमारे माता हो, तुम ही हमारे पिता हो, तुम ही हमारे बंधु हो, तुम ही हमारे सखा हो, तुम ही हमारे सब, यही तो प्रार्थना करते हैं ना। तो वही तो हमारे हृदय में बैठा हुआ है, वही तो भगवत गीता में हमसे कह रहा है कि मुझसे प्रेम करो, मुझ में मन लगाओ, मेरी सेवा करो, मेरे भक्त बनो। तो हमको सिर्फ उसकी आज्ञा माननी है, जैसे अच्छा बच्चा उसको माना जाता है जो माता पिता की आज्ञा माने। ये मर्यादा तो सबको जानते हैं ना, अच्छा बच्चा बच्चा कौन है जो आप माता पिता की आज्ञा माने। अब जब हम कहते हैं भगवान तुम ही हमारे माता पिता है, तो उसकी आज्ञा माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? तो वो कहता है मेरे भक्त बनो, तो हमको बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तो सीधी सी बात है, जब वो हम कहते हैं कि वो हमारे माता पिता है तो फिर उसकी आज्ञा माननी चाहिए ना। तो उसकी आज्ञा न मानने वाला बच्चा, आपको कैसा लगता है आपका बच्चा आपकी आज्ञा न माने तो कैसा लगता है आपका बच्चा? अच्छा लगता है? नहीं लगता है तो फिर आप अच्छे लगोगे भगवान को उसकी आज्ञा नहीं मानोगे तो? सुझा तो समझना चाहिए ना, सभी सरल भाषा में समझना चाहिए। ऐसे ही भगवान हमसे प्रेम करते, मैंने आपको कहा ना, जैसे आप जन्म लेते हुए बच्चे से करते हो, जन्म लेने से पहले बच्चे से उतना ही उससे ज्यादा प्रेम करता है। तो केवल आपको ये याद दिलाना है कि आप का असली संबंधी सगा, आपसे प्रेम करने वाला, कभी आपका साथ न छोड़ने वाला, आपके हृदय में बैठा हुआ भगवान, वही भगवत गीता में आपको वो करता क्या है हमसे? आप बच्चे से क्यों, आप बच्चे की सेवा क्यों करते हो? हाँ माता जी, आप लोग बच्चे से प्रेम क्यों, बच्चे की सेवा क्यों करते हो? ममता में क्या अच्छा लगता है? प्रेम होता है, प्रेम के वशीभूत होके हम सेवा करते हैं बच्चे की सेवा प्रेम के कारण करते हैं ना। जबरदस्ती पुलिस तो नहीं जबरदस्ती कराती, नौकरानी प्रेम से नहीं करती, वो तनख्वाह लेती है ऐसे करती है, हम तो बगैर तनख्वाह के करते हैं ना बच्चे की सेवा। तो भगवान भी हमसे प्रेम के कारण सेवा करता है, क्योंकि हमसे वो प्रेम करता है। तो जो बच्चा, जिस बच्चे से आप प्रेम से सेवा करते हो, आप क्या चाहते हो बच्चा क्या करे? आपसे प्रेम करे, यही चाहते हो ना, आए तो आपकी गोद में बैठ जाए, आपको गले लग जाए, हा? यही आपकी इच्छा है कि बच्चा आपसे प्रेम करे, यही चाहते हो ना। तो भगवान हमसे प्रेम करता है, वो चाहता है कि आप हम उससे प्रेम करें। और दुनिया का एक ही धर्म है कि भूला भटका जीव वापस मुड़ के भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करे, यही धर्म है। और कोई धर्म दुनिया में है ही नहीं, भगवान एक है, धर्म भी एक है, और वो धर्म है भगवान से प्रेम करना। बहुत ज्यादा धर्म दुनिया में नहीं है, एक ही धर्म है। बाकी जो ये नहीं समझता है कि भगवान से प्रेम करना है, वो कोई भी धर्म नहीं मानता है, वो तो अपनी मनमानी करता है, नाम कोई भी दे दे धर्म का। आकाश में सूर्य होता है वो एक ही है कि नहीं, दो चार पांच है? हिंदुस्तान सूरत वालों के लिए अलग है और बड़ौदा वालों के लिए अलग है क्या? बंबई वालों का अलग तो नहीं है ना सूरज? अमेरिका वालों का भी अलग नहीं है ना? सबको ही प्रकाश दे रहा है ना? ऐसे भगवान भी सबका एक ही है। जैसे सूर्य सबको प्रकाश देता है, ऐसे भगवान सबसे प्रेम करता है और ज्ञान का प्रकाश देता है भगवद गीता के माध्यम से कि इसको प्राप्त कर लो। लेकिन जो सुबह उठ के सूर्य का दर्शन ही नहीं करे, उल्लू की तरह सूर्य उगे और आंखें बंद करके, तो क्या सूर्य से लाभ लेगा? तो भगवान एक है, भगवान से प्रेम करना एक यही धर्म है। जो इसका पालन नहीं करता है वो किसी धर्म का नहीं है, वो तो अपने, उसका धर्म क्या है, उसके मन में जो आए वो धर्म है, वो मन मत धर्म वाला है। और हम कृष्ण मत धर्म वाले हैं, जो कृष्ण हमको कहा है कि मुझसे प्रेम करो, तो हम उससे प्रेम कैसे करें? आप बच्चे को प्रेम करते हो तो क्या करते हो, लाड से उसको बुलाते हो और क्या करोगे, खिलाते पिलाते हो यही करोगे, कपड़े पहनाते हो यही करोगे ना। इसलिए एक भगवान का बहुत सुंदर सा गोपाल जी को घर में बिठाओ, प्रेम से उसको नहलाओ, सुंदर वस्त्र पहनाओ, अच्छा सा भोजन बनाओ, उसको खिलाओ, तो प्रेम अपना भाव भगवान से आपका हो जाएगा आस्ते आस्ते। बच्चे से भी ऐसे ही प्रेम होता है ना, तो वही काम भगवान के साथ करने का प्रयास करो अपने घर में, तो भगवान से प्रेम हो जाएगा। जो ये नहीं कर पाते हैं वो भगवान से प्रेम कर ही नहीं सकते। जब तक व्यक्तिगत रूप से घर के अंदर ऐसे प्रेम किया, प्रेम का भगवान से अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक हृदय में भगवान का प्रेम आएगा ही नहीं। इसलिए जो हमसे प्रेम करता है, जो हमारा सार संभाल लेता है, जो हमारा भरण पोषण कर रहा है, जो हमारी देखभाल कर रहा है, हर स्थिति में कहीं हमारे को अकेला नहीं छोड़ रहा है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना हमारा कर्तव्य है, और भूले हुए रिश्ते को स्थापित करना हमारा धर्म है। और यही शिक्षा आपको सप्ताह में एक दिन दी जा रही है। आपको कैसे लगेगा हफ्ते में एक दिन बच्चा आए और आपकी गोद में बैठे और छह दिन आपसे मिले भी नहीं, आपको कैसा लगेगा? बात है कि बच्चा रोज गोद में आए तो अच्छा लगता है ना, कभी कभार आए तो प्रेम थोड़ा कम ही रहता है। अधिक
आपको लगता है कि गीता का प्रवचन और करें आप लोगों के अच्छा रहेगा?
कृष्ण प्रेम, कृष्ण लीला को पढ़ के देखो, कृष्ण से प्रेम हो जाएगा। कृष्ण लीला को सुन के देखो, कृष्ण से प्रेम हो जाएगा। कैसे वो अपने भक्तों की सहायता करते हैं, प्रेम करते हैं, और भक्तों को कभी दुखी नहीं देख सकते हैं, भक्तों को कभी संकट में देख नहीं सकते हैं, इतने दयालु हैं, इतने करुणामय हैं। ऐसे भगवान के बारे में सुनेंगे तो भगवान से प्रेम होगा, तभी जन्म सार्थक होगा। दुनिया के बहुत से लोगों से हमने प्रेम का झूठा मूठा प्रेम का बहुत ड्रामे करके देखे, बहुत जन्मों में करके देखे, किसी ने हमारा साथ नहीं निभाया, ये मानना पड़ेगा। न कोई साथ हमेशा हमारे रह सकता है। एक ही भगवान गोपाल जो कह रहे हैं भगवद गीता में, मैं अभी आपका नमे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है क्योंकि भक्त मेरे आश्रित होता है। इसलिए मानव जन्म के लक्ष्य को प्राप्त करो। और मेरी बेनती आपको हाथ जोड़ के ये है कि कलयुग के अंदर धर्म की शिक्षा के दुर्ग या किले की आखिरी दीवार नारी है। पुरुषों के पास समय नहीं है, वो बेचारे सुबह भागा दौड़ी करके जाते हैं, बहुत कमाना मुश्किल है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत सुबह से शाम तक धक्के खाते हैं, तब चार पैसे कमाना और फिर घर का भरण पोषण करना, ये बहुत बड़ा परिश्रम है। इसलिए उनके पास समय नहीं है कि घर के अंदर वो आध्यात्मिक धार्मिक वातावरण को स्थापित कर सके, ये उनके पास इतना समय नहीं है। आपको भगवान ने ऐसा कोमल हृदय भी दिया है, दया भी दी है, और प्रेम करने की भी परिकाष्ठा आपके हृदय में भगवान ने स्थापित की है। इसलिए घरों के अंदर बच्चों को अच्छे से अच्छा आध्यात्मिक वातावरण दोगे तो धर्म के किले के अंदर सुरक्षित रहोगे। ये दायित्व अब नारी के ऊपर रह गया। पुरुष कलयुग के अंदर धर्म का विशेष काम कर पाएगा, ये संभव नहीं। पुरुष को केवल धार्मिक आप कैसे बना सकती हो? भगवान को भोग लगाकर प्रसाद उसको खिलाना करो। जैसे भगवान को भोग लगा के प्रसाद पुरुष को गरम गरम खिलाओगी, उसका हृदय आस्ते आस्ते नरम होने लगेगा और उसके हृदय में भी भगवान की कृपा प्रसाद के रूप से प्रवेश करेगी, तब घर का वातावरण आध्यात्मिक होने लगेगा। तो आप अपने घर में ऐसा वातावरण बनाओ, आपके छोटे बच्चों का के ऊपर संस्कार ऐसा धार्मिक हो, नहीं तो आने वाला जो भविष्य का युग है कलयुग का, बहुत संकट का समय आएगा। बच्चे नहीं मानते हैं। अभी से आप छोटे बच्चों को भी देखते हैं, टेलीविजन जितना उनका दिमाग खराब करती है उससे ज्यादा मेहनत करके आपको उनको अच्छा बनाने का प्रयास करना पड़ेगा। जितने घंटे टेलीविजन के ऊपर बच्चे बैठ के बिगड़ते हैं उससे ज्यादा समय आप बच्चों को देख के सुधारने का प्रयास करोगे तब सुधरेंगे। तो आपके ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है बच्चों को लेकर बैठ के कथाएं कहानियां बच्चा सुनना पसंद करते हैं। अब देखने हैं कि तो बहुत से भगवान के सुंदर से अगर देखना ही है उनको तो VCD में भगवान का कोई सुंदर हनुमान का चरित्र दिखा दो कि भगवान की सेवा कैसे कर रहा है। कोई छोटे छोटे बच्चों के ऐसे भी बहुत सी चीजें, उनको घर के अंदर वातावरण आपको धार्मिक बनाना पड़ेगा। नहीं, आपने एक गलती की तो आप समझ लो कि भविष्य में जो आने वाला पीढ़ी है वो सारी बिगड़ जाएगी। आखिर हम सब ये कमा के मेहनत करके घर बना के भविष्य की पीढ़ी को सुखी करना चाहते हैं ना, तो वो बिगड़ ही जाएंगे तो हमारा फायदा क्या ये सब करने का, मेहनत मजदूरी घर बनाने का जरूरत क्या है? अगर उनको हम सुरक्षित और सुधार नहीं सकते तो ये बनाने की जरूरत क्या है? तो इसलिए घरों के अंदर 1-2-3 घंटे ऐसा वातावरण आध्यात्मिक रखो कि बच्चों के दिमाग के ऊपर ये बच्चे आपको देखेगा भगवान को प्रणाम करके फरोग करता है तो इतना बच्चा अपने आप भगवान के आगे आकर सो जाएगा। वो जो सो जाएगा वो जानता नहीं है लेकिन उसको पुण्य प्राप्त हो जाएगा अपने आप। आप अगर तिलक लगाओगे तो बच्चा आपसे पहले लगा के चला जाएगा। वैसे भी तिलक लगाने में फर्क क्या है, वैसे भी कोई बिंदिया इधर टेकते हैं कभी इधर लगाते हैं दोस्त कुछ न कुछ करते हैं तो अच्छी तरह से एक तिलक लगा लो, कोई नुकसान कौन सा होता है? आजकल कुछ भी लोग पागलों की तरह कर सकते हैं, इसलिए अच्छा भगवान के प्रेम का निशान क्यों नहीं सर इधर भगवान के चरण को सर के ऊपर धर क्यों धारण क्यों नहीं कर लेना चाहिए? गौरव के साथ करना चाहिए, इसमें घबराने की क्या बात है? जितने भगवान के फोटो देखे सबके ऊपर तिलक लगा हुआ है ना, देखा है लगा हुआ है कि नहीं हुआ? साधु संतों के चित्रों के ऊपर फोटो लगा तिलक लगा हुआ है ना, उनको प्रणाम करने जाते हो ना, इसका मतलब वो बड़े हैं अच्छे हैं इसलिए करने जाते हो ना, तो फिर आप क्यों नहीं बनते हो अच्छे, आप क्यों नहीं लगा देते हो? जिनको मानते हो, जिनकी जाके पूजा करते हो, जिनको प्रणाम करते हो, तो जैसे उनको लगा हुआ ऐसे तिलक तो अपने आप को लगा लो ना, उसमें क्यों घबरा रहे? घबराना नहीं चाहिए ना उसमें, तो उत्साह होना चाहिए लगाने में। तो ये घर के अंदर आध्यात्मिक वातावरण बनाओ। घंटी बजेगी घर के अंदर, दीप होगा, अगरबत्ती होगी तो आध्यात्मिक वातावरण होगा। नहीं तो घरों के अंदर बोतलें बजेंगी, चीयर्स चीयर्स होगा तो आपका सारा समाप्त हो जाएगा संस्कृति का। और ये बड़े घरों के अंदर जहां मंदिर बनाया करते थे वहां शराब की बोतलों के बड़ी अच्छी बारें बनी है। जहां घर में मंदिर का स्थान हुआ करता था वहां बारें बनी हुई है बड़े घरों के अंदर, जाके देख लेना। तो वहां घंटी नहीं बजती है, वहां दीप नहीं होता है, वहां तो इतना भद्दा व्यवहार होता है कि सभ्य मानव वहां रह भी नहीं सकता है। पर पीने के बाद आदमी पागल ही होता है कि नहीं होता है? तो घरों को सुधारना आपके ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। घर के अंदर कीर्तन करो, हरि नाम भगवान के नाम का कीर्तन घर में करो, घर से बाहर भी भगवान का नाम सुनने में आना चाहिए, नहीं तो गालियां ही सुनने में आएंगी बाहर। जहां संस्कृति नहीं है, जहां आध्यात्मिकता नहीं है, जहां भगवत गीता भागवत रामायण का सत्संग नहीं होता है, उन घरों के बाहर केवल गालियां सुनने में आती है और एक दूसरे को मारा मारी की आवाज सुनने में आती है। आप चाहते हो कि ऐसा वातावरण हमारे घरों के अंदर रहे? नहीं, तो इसके लिए अति आवश्यक है कि आप अपने घरों में बच्चों को संस्कार देने के लिए दवाई का कड़वा घूंट जैसे पीना पड़ता है ना, ऐसे अभी दवाई का कड़वा घूंट ये भगवान के नाम जपने का पियो। दवाई कड़वी क्यों पीते हैं? कि हमारी रोग चला जाएगा। इस वक्त हमको भौतिक रोग लगा हुआ है, इस वक्त भगवान का दवाई नाम लेना कड़ी दवाई के बराबर है, लेकिन ये हमको पीनी है, इसलिए ये पीनी है कि हमारा स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं हुआ तो हम मर जाएंगे और हमारा बेकार जीवन हो जाएगा। इसके कड़वी दवाई के तरह ये घूंट दवाई का पी लो भगवान के नाम का, ताकि आपके भविष्य के बच्चों का जो आने वाली पीढ़ी है उसको सुरक्षित और सुखी देख सके। इसलिए ये अति आवश्यक है। ये कोई कभी कभार करने का नहीं है, नित्य नेम से करने का। जब तक रोज अभ्यास नहीं करेंगे तब संस्कार नहीं पक्के होंगे। संस्कार तभी होते हैं जब उसको नित्य नेम से किया जाता है। तो इसलिए हमारी विनती है कि घरों के अंदर आप ऐसे वातावरण करो। मैंने पहले भी कहा, घर वही केवल सुखी और वैकुंठ के समान बन सकता है जिसमें रोज भगवान के महामंत्र का कीर्तन होता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिस घर में भगवान का बहुत सुंदर श्री विग्रह गोपाल राधा कृष्ण सीताराम लक्ष्मण जो भी स्थापित करके उसकी उसको प्रेम के साथ पूजा की जाती है, और जिस घर के अंदर जो घर में भोजन बनता है भगवान को भोग लगता है और सब प्रसाद पाते हैं, और जिस घर के अंदर भगवत गीता रामायण भागवत का पाठ होता है, वो घर वैकुंठ है। उस घर के सदस्य दुख दरिद्रता से दूर है और सुख और संपत्ति से भगवान की भक्ति कर सकते हैं। ये चार चीजें सब अपने घर में स्थापित करने का प्रयास करो। टीवी लाना इतना जरूरी नहीं है, भगवत गीता लेके घर में पढ़ना उससे ज्यादा जरूरी है। वो 25-50 हजार की है, ये 50-100 रूपये की है, लेकिन ये आपके 7 पीढ़ियों के संस्कार बदलेगी। वो आपके 7 वर्ष के बच्चे का सत्यानाश करेगी। उसकी जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा आवश्यकता इसकी घर में होने की है। ये आवश्यकता है बहुत ज्यादा। आपके घर में एक 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 अलमारी होती है, एक अलमारी नहीं एक होता है, उसका नाम है क्या कहते हैं, जो ड्राइंग रूम में रखा होता है जिसमें बहुत सी गुड़ियां लाके सजा के रखते हैं बच्चों के लिए, शोकेस, और बहुत सी आइटम उसमें चपका के रखते हो, उन सब को तापी में डाल के उसकी जगह पे सुंदर मंदिर बना के भगवान श्री राधा कृष्ण को बिठा दो। ये गुड़िया मुड़िया लाने से कुछ होने वाला नहीं है। कई बार लाए पड़े हैं, उधर के उधर पड़े हैं, किसी काम नहीं आए, उसकी जगह भगवान को स्थापित कर दो तो आपका सारा वातावरण बदल जाएगा। सोपी उसका नाम क्या 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 शोकेस में क्या रखते हैं, शोकेस में क्या रखते हैं, शोपीस, असली नहीं हुआ ना, शोपीस है। अरे असली कोई चीज रखो ना, नकली शोपीस क्यों रखे सारे।
हमारे कितने भक्तों के घर में डिस्प्ले है,
नहीं उतना ही शोपीस है, शोपीस की क्या जरूरत है, असली पीस रखो ना, शो का मतलब दिखाने की चीज, असली पीस रखो ना, तो भगवान को रखो। हर एक चीज का सदुपयोग करना अति आवश्यक है। तो ये हमारी विनती है कि ये मौका आप मत गमाइए। एक घर भी इस तरीके से सुंदर बन गया तो एक परिवार के सदस्यों के माध्यम से हो सकता है कि भविष्य में उसका एक छोटा बच्चा प्राइम मिनिस्टर बन जाए, पूरा देश उससे सुधर सके। इसलिए प्रभुपाद ने लिखा है कि एक व्यक्ति भी भगवद गीता समझ गया तो मैं समझता हूं कि मेरा ये सारा परिश्रम मैं सफल मानूंगा। हो सकता है कोई किसी में से एक बच्चा किसी का कल बड़ा सा कमिश्नर बन के आए सूरत में और सब लोगों का उद्धार कर ले, संभव है। हमें मालूम थोड़ी है कि ये बच्चे कौन है या इनका भविष्य कैसा है। तो इसलिए अच्छा वातावरण देंगे तो हो सकता है कि पूरे दुनिया का उद्धार कर ले, एक देश का उद्धार कर ले, परिवार का उद्धार कर ले। इसलिए ऐसा वातावरण घरों में बनाना अति आवश्यक है। हम थोड़े हैं तो कोई बात नहीं, एक भी हो तो बहुत बड़ी बात है। वातावरण ऐसा आप देख के देखो, आगे भविष्य भगवान के हाथ में है और भगवान उसी के भविष्य को सजाता है जो उसके सामने अपना सर झुकाता है। अगर हमारे को अपना भविष्य बच्चों का सुंदर बनाना है तो निश्चित रूप से भगवान के चरणों में रोज प्रणाम करने का नियम स्वयं बनाएं और बच्चों को ये अभ्यास करना सिखा दें। बहुत से घरों में अभी तो योगा के नाम में बहुत आसन एक्सरसाइज करने का अभ्यास करते हैं, बहुत अच्छा है शरीर के लिए, लेकिन इससे अच्छे बच्चों को बोलो कीर्तन में नाचो। एक नाचना और एक तैरना, सारे जितने आसन है उन सब आसनों का राजा क्या है, नृत्य। नृत्य करोगे तो सारे आसन उसमें हो जाते हैं, सारे अंग एकदम सब बीमारियों से मुक्त हो जाते हैं। नृत्य जैसा एक भी आसन को नहीं, सारे आसन नृत्य के सामने फीके पड़ जाते हैं। बच्चे घर में शोर क्यों करते हैं, बच्चे घर में जल्दी क्यों नहीं सोते हैं, बच्चे घर में टेलीविजन के ऊपर क्यों बैठते हैं, उसका एक कारण है बच्चों में बहुत ज्यादा शक्ति होती है, उसको जलाने के लिए दौड़ भाग जरूरी है और दौड़ भाग घर में हो नहीं सकती है, बाहर भेज नहीं सकते हैं, आपके पास टाइम है नहीं कि उसको पार्क में ले जाओ और बोलो कि इसके चार चक्कर लगाओ, इसलिए बच्चे न सोते हैं और हमेशा उधम मचाते हैं घर में। इसलिए बोलो बेटा आधा घंटा अब हम करते हैं कीर्तन और आप नाचो, देखें आप में से आखिर में कौन थकता है। कीर्तन समाप्त हो, गरम गरम दूध पिलाओ, रोटी खिलाओ, बच्चा आधे खाते हुए सो जाएगा, न टीवी के ऊपर आपके बिजली का बिल बढ़ेगा, थकेगा सो जाएगा। और आप भी थोड़ा कीर्तन में दो पांव हिलाओगे तो आप भी थक जाओगे और घर में झगड़ा भी नहीं होगा, हाँ और सो जाओगे मेरे खत्म। तो सारे सुख है, हाँ जिम में जाएगा तो जिन बनेगा, जिम में जाएगा जिन बनेगा, भगवान के कीर्तन में भाग लेगा तो भक्त बनेगा, आप जिन बनना चाहना है भक्त बनना चाहते हो नहीं, बच्चों को आप अभ्यास करा के देखो, आप थकेगा बच्चा भोजन खिलाओ और सो जाएगा तो सारी समस्याओं का समाधान हो गया ना, एनर्जी नहीं बर्न हो रही है बच्चों की, ये समस्या है हमारी और हमारे पास टाइम नहीं है, नहीं कीर्तन करता है बहुत अच्छी सीडी लगा दो कीर्तन की, वैसे भी पागल हमने बहुत देखे हैं सीडी लगा के ऐसे घर में नाचते रहते, नाचते भी नहीं नाचते पागलों की तरह नाचते हैं, इससे अच्छा है भगवान के कीर्तन की सीडी लगा लो और प्रेम से बैठ के नाचो, कम से कम भगवान के लिए नाच रहे हो ना, नाचना ही है तो भगवान के लिए नाच लो, बच्चों को तो कम से कम ऐसा अभ्यास कराओ आधा घंटा, तो उनको बहुत अच्छी तरह से नृत्य करना सिखाओ, तो थक जाएंगे सुख से सो जाएंगे, सवेरे सुबह उठ जाएंगे, उस वक्त उठा के बोलोगे पढ़ाई करो बेटे, पहले भगवान का नाम जप लो, आप जपोगे तो वो भी जपेगा, फिर बोला बैठ के पढ़ो, जो हम जब पढ़ते थे चार बजे माँ उठाती थी और बैठती बत्ती जला के बैठे पढ़ो, तब पढ़ के जाते थे वो याद होता था, सारा दिन पढ़ने की जरूरत नहीं है, रात सारी पढ़ने सुबह सवेरे उठ के पढ़ने की जरूरत है, उस वक्त पहले उठो उठाओ जब कर रात को सवेरे सुनाओ सुबह सवेरे उठ जाएगा। तो ये वातावरण घर के अंदर आध्यात्मिक बनाने का आप प्रयास नहीं करो, संकल्प करो हमको ये बनाना है, प्रयास नहीं संकल्प, दृढ़ संकल्प करो हमको अपने घर को वैकुंठ बनाना है, हमको दुख से मुक्त होना है, हम थोड़ा कष्ट सह लेंगे लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारा पीढ़ी आगे आने वाली पीढ़ियां दुख देखें, इसलिए हम कष्ट सह लेंगे लेकिन उनको दुखी होने नहीं देंगे, हम कष्ट क्या सह लेंगे, भगवान का नाम जप लेंगे, भगवद गीता पढ़ लेंगे, पढ़नी तो बचपन में चाहिए थी लेकिन अब भी पढ़ने का प्रयास कर लेंगे, लेकिन हम अपनी पीढ़ियों को बिगड़ने से बचाने का पूरा यत्न करेंगे, प्रयत्न करेंगे और संकल्प कर लो ऐसा। हरे कृष्ण, धन्यवाद। फोर्टी टू मिनट हो गए, टाइम क्या हो गया आ रहा है।